भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 30 क्रमशः जो चलते आ रहा है। आज का तीसरा सेशन है इस श्लोक पे। इसके पहले दो सेशन हुए हैं। यह श्लोक क्या कहता है? आर्ट ऑफ एक्शन। आर्ट ऑफ एक्शन के विषय भी इसमें चर्चा हो रही है। भगवान बहुत ही अच्छी तरह से हमको समझा रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामय्यं ददाति स्वबलान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणारघुनाथान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णवादां सगणलिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णौ करुणासिन्धु दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रियादे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च उपासितरूपेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय का तीसरा श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसः निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अर्थात अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व की किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आर्ट ऑफ एक्शन। कितनी बातें बताइए भगवान ने। हमारी चर्चा हुई थी कर्मों की दो विशेषताओं से शुरुआत हुई थी। कर्म आदर्श कर्म किसको कहा जाता है? उन कर्मों की दो विशेषताएं होती है। पहली विशेषता क्या होती है? वो कर्म करने से शक्ति का संचार होता है, पहली बात होती है। और दूसरी बात, जो शक्ति प्राप्त हुई है, जो शक्ति का संचार हुआ है, वो शक्ति का क्षय नहीं होता है, व्यर्थ की कार्य होती है। अर्थात व्यर्थ की कार्यों में हम लगे नहीं रहते हैं। ये दो विशेषताएं हमने चर्चा की थी। परंतु कई बार ऐसे देखा जाता है कि व्यक्ति क्या करता है, सोचता है मेरे अंदर तो शक्ति का संचार हुआ है, मैं तो रोज हरिनाम जप करता हूं 16 माला या 4 माला, रोज मैं भगवान के नाम का जप करता हूं, थोड़ा बहुत 19-20 हो गया तो क्या हुआ। तो जो शक्ति कर्म से प्राप्त होती है, जो शक्ति भक्ति से प्राप्त होती है, उस शक्ति के आधार पे विपरीत कर्म करना, गलत कार्य करना, असभ्य वर्तन जिसको कहते हैं, ऐसे कार्य में लगे रहना, इससे क्या हो जाती है? शक्ति क्षीण हो जाती है। गोपाल जी महाराज कई बार हाथी का उदाहरण देते हैं, हाथी क्या करता है, बहुत अच्छा स्नान करता है, फ्रेश हो जाता है एकदम, बहुत अच्छा शुद्ध रखता है उसको, अच्छा अनुभव रहता है, परंतु थोड़े समय के पश्चात उसको कीचड़ दिखती है, सोचता है हाथी तो मैं इतना अच्छा नहाया हूं स्वच्छ, थोड़ी बहुत कीचड़ शरीर पे ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है, कीचड़ में नहा लेता हूं, फिर जाके कीचड़ में नहा लेता है। क्यों नहाता है कीचड़ में, क्योंकि वो सोचता है अभी तो मैं नहाया हूं इसलिए थोड़ी बहुत कीचड़ चढ़ गई तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे व्यक्ति सोचता है मैं हरिनाम का जप तो करता हूं, मैं तो भक्त हूं, मैं तो भगवान को मानने वाला हूं, कभी कभार इधर उधर हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, इस प्रकार से व्यक्ति दूर होता है। परंतु यह बहुत ही अपराध है, बड़ा अपराध है, इसके कारण हमारी शक्ति क्षीण होते जाती है। भगवान हमको क्या फॉर्मूले, तीन प्रकार के सूत्र बताए इस श्लोक में, कर्म के तीन सूत्र बताए, थ्री फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले बताए, तीन सूत्र बताए कर्म करने के, कौन से, शरीर के द्वारा उत्साह से कर्म करो, डायनामिक एक्शन बाय द बॉडी, नंबर टू सरेंडर्ड माइंड, नंबर तीन फोकस इंटेलिजेंस, एकाग्र बुद्धि, आत्मज्ञान की ओर एकाग्र बुद्धि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो इसमें हमने पहला पॉइंट देखा है, पहला पॉइंट है शरीर नित्य क्या करता है, शरीर का काम क्या है, कार्यरत रहता है, शरीर क्या करता है, कार्यरत रहता है, ऑलवेज इन एक्शन, शरीर कुछ ना कुछ कार्य, नित्य कार्यरत रहना होता है, इसलिए भगवान यहां पे क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, युद्धस्व, युद्ध करो अर्थात कर्म करते रहो, करते रहो कर्म, करते रहो युद्ध, परंतु युद्ध का अर्थ होता है ऐसा उत्साहवर्धक कार्य, कैसा कार्य, उत्साहवर्धक कार्य, ऐसा उत्साहवर्धक कार्य जो संसार के अनेक कठिनाइयों को पार करके विजय को प्राप्त करवाते हैं, ऐसा कार्य एक्शन, ऐसा कर्म इसको कहते हैं जो संसार के अनेक कठिनाइयों को पार करके अंततः हमको विजय प्रदान करता है, वो वास्तविक कर्म है। बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, यदि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो अनेकों अनेकों कठिनाइयों को पार करते करते हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसको हमको प्राप्त कर दे रहा है, ऐसा कर्म यदि हम नहीं करते तो हम क्या करते हैं, हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, हम भ्रम में, जितने जल्दी भ्रम के बाहर निकले उतना अच्छा, परंतु ये हम भ्रम में है, ऐसे कार्यों को, कार्यों के कारण बल प्राप्त नहीं होता है, शक्ति प्राप्त नहीं होती है, और जीवन क्या हो जाता है, जीवन भयभीत हो जाता है, जीवन असहाय स्थिति में पहुंच जाता है, जीवन उदासीन हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शरीर निष्क्रिय हो जाता है।
निष्क्रियता की क्या व्याख्या है,
निरुत्साह, हमने क्या व्याख्या कही थी, वास्तविक निष्क्रियता किसको कहते हैं, आपने अभी यहां पे स्पीकर और माइक लाया, स्पीकर भी था और माइक भी था, वो क्या था, उसको क्या कहेंगे, क्रियाशील था कि निष्क्रिय था, निष्क्रिय था, क्या था, निष्क्रिय था कि सक्रिय, क्यों हमने कहा उसको निष्क्रिय, माइक भी है, स्पीकर भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, क्या है सही ढंग से उपयोग उसका, उसका कार्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, स्पीकर का उद्देश्य क्या है, आवाज को मैग्निफाई करना, आवाज को बड़ा करना। अब ये उद्देश्य भी पूरा नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? उद्देश्य पूरा कर रहा है वो नहीं कर रहा है। स्पीकर बनने का उद्देश्य क्या है? आवाज को मैग्निफाई करना, साउंड वेव्स को मैग्निफाई करके प्रोड्यूस करना, है ना? ये स्पीकर का उद्देश्य है, वो पूरा नहीं कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? निष्क्रिय। मनुष्य का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की कृपा प्राप्त करना। मनुष्य है, कार्य भी कर रहा है, परंतु उद्देश्य प्राप्ति हो रही है तो क्या कहा जाएगा? यूजलेस, निष्क्रिय। उद्देश्य प्राप्ति की ओर यदि कार्यरत नहीं है तो कार्य करते हुए भी वो क्या है? निष्क्रिय। इट हैज नो वैल्यू, ये निष्क्रिय का। उत्साह निश्चय धैर्य तप कर्म प्रवर्तना संगति प्रसिद्धि। उत्साह निश्चय धैर्य चाहिए, निश्चय होना बहुत जरूरी है, उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए। इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई, हम उसको फिर से रिपीट नहीं करेंगे। सक्रियता अर्थात क्या? ये तो हो गई निष्क्रियता। सक्रियता अर्थात क्या? एबीसी, एबीसीडी का अर्थ क्या होता है? एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर, इंटरेक्शन, ये सक्रियता। सक्रियता की ओर हमको ले जाता है, हमको हमारे उद्देश्य प्राप्ति की ओर ले जाता है। ए बी सी एटीट्यूड हमारी प्रवृत्ति,
क्या हमारा एटीट्यूड है।
दूसरी बात बिहेवियर, जो एटीट्यूड है वो बिहेवियर में है कि नहीं है। केवल विचार भी है, बहुत अच्छे अच्छे विचार ही करके रह गए, और विचारों में सब कुछ है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं, बहुत सुंदर स्वप्न देख रहे, स्वप्नवत सब। तो विचार जब आचरण में आते हैं तो उसको बिहेवियर कहते हैं, और बिहेवियर अर्थात आचरण, इस आचरण में आप जीवन भर लाते रहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्रयासरत रहते हैं नित्य, वही आचरण फिर हमारा कैरेक्टर बन जाता है, चरित्र बन जाता है। और यदि ठीक ठीक चरित्र है, ठीक ठीक बिहेवियर है, ठीक ठीक एटीट्यूड है, तो हमको राइट डायरेक्शन मिल जाती है। और जब हमको राइट डायरेक्शन मिल जाती है तो उद्देश्य, जब हमको उद्देश्य प्राप्त हो जाता है, उद्देश्य प्राप्ति की ओर हम रहते हैं, तो हम सक्रिय है। अन्यथा जीवन का कोई उपयोग नहीं है, निष्क्रियता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
फिर हमने दूसरा फॉर्मूला देखा था,
दूसरा फॉर्मूला क्या है? मन के द्वारा समर्पण, समर्पित मन, है ना।
समर्पित मन कैसा है?
उद्देश्य प्राप्ति के लिए यदि हमारा मन लगा रहेगा, समर्पित रहेगा, तो जीवन में उत्साह है। उसके उदाहरण दिए थे हमने, क्या उदाहरण दिए थे? बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसके उदाहरण की चर्चा हुई थी, उद्देश्य प्राप्ति के लिए हम जैसे जैसे मन को समर्पित करते हैं, जितने जितने स्तर तक हम मन को समर्पित करते हैं, उतने स्तर तक, उतने प्रपोर्शन में, उतने ही प्रमाण में हमको उत्साह और शक्ति का अनुभव होता है। लेकिन उदाहरण दिया था, बोरीवली से नेपियंसी रोड जाना है, नेपियंसी से अमेरिका जाना है, अच्छा मून पे जाना है, उसके आगे गोलोक तक जाना है। प्रत्येक स्टेज पे कैसा उत्साह बढ़ता है, प्रत्येक स्टेज पे कैसी शक्ति बढ़ती है, इसकी चर्चा हुई थी। अब हम उसकी केवल रिवाइज करा दे, फ्लैशबैक कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज के उद्देश्य दिव्य थे और हिरण्यकश्यप के उद्देश्य भौतिक भ्रमित करने वाले थे। तो जो उद्देश्य जैसे उद्देश्य है, हिरण्यकश्यप के उद्देश्य भौतिक होने के कारण हिरण्यकश्यप की शक्ति क्षीण होती गई और प्रहलाद महाराज के उद्देश्य दिव्य होने के कारण प्रहलाद महाराज की शक्ति वो निर्भय, कभी वो भयभीत नहीं, कभी वो भ्रमित नहीं है, कभी वो कंफ्यूज नहीं है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
तीसरा सूत्र हमने चर्चा किया था एकाग्र बुद्धि। एकाग्र बुद्धि अर्थात यदि हम हमारे बुद्धि को, हमारे विचार और क्रियाओं को प्रवृत्त करते हैं, सोचिए जरा क्या विचार मेरे मन में आ रहा है, क्या क्रिया मैं कर रहा हूं। हमारे बुद्धि को हमारे विचार और क्रियाओं की ओर प्रवृत्त करते हैं तो बुद्धि यह जानती है कि सब कुछ, जो कुछ भी चेतना हमारे अंदर है वो आत्मा के कारण है। तो बुद्धि क्या करेगी, हमारे सारे विचार को और सारे क्रियाओं को आत्मा की ओर ले जाएगी। परंतु उसके लिए बुद्धि को एकाग्र करना, फोकस इंटेलिजेंस, बुद्धि को एकाग्र करना होगा। बुद्धि जब एकाग्र होगी तभी शक्ति का अनुभव होगा, तभी राइट डिसीजन योग के निर्णय हो पाएगी। एकाग्र बुद्धि अर्थात सारे विचारों को एक दिशा की ओर, सारे विचार जैसे वायु, जैसे नदी जल बहता है, एक धारा इधर से बहती है, एक धारा इधर से बहती है, एक धारा इधर से बहती है, तो उसके शक्ति का अनुभव नहीं होता है। सारी धारा एकत्रित हो गई और फोर्स से वो बहने लगी तो उससे एनर्जी फॉर्म होती, शक्ति ऊर्जा ऊर्जा उत्पन्न होती, विद्युत उत्पन्न होती है उससे। ये प्रकाश बल्ब लगे हुए हैं, हमने इसकी भी चर्चा की थी, एक यहां लगाए, एक वहां लगाए, इधर एक इधर, चारों एक ही लगाए, 5000 वाट का एक ही लगा दिया तो फोकस्ड शक्ति तैयार होगी। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि यह जानती है, परंतु कभी कभी बुद्धि संपर्क में ऐसे विषय वस्तुओं के आने के कारण विपरीत विचार करती है। बहुत तो बहुत बुद्धिमान है परंतु आत्मज्ञान नहीं है, बहुत बुद्धिमान बिना आत्मज्ञान के। आत्मज्ञान के बिना बहुत बड़ा बुद्धिमान होना यह विध्वंसक लक्षण है। बुद्धि बहुत है पर आत्मज्ञान नहीं है। क्या कुछ तो कहते हैं, कुछ तो है काम। ऐसे व्यक्ति के हाथ में सब कुछ आ गया जो कुछ जानते ही नहीं है। ऐसी बुद्धि है, बुद्धि सब कुछ मटेरियल एनर्जी भौतिक शक्ति के विषय में सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है, बहुत एक्सपर्ट है, परंतु आत्मज्ञान की ओर नहीं जा रही थी। बुद्धि क्या करेगी, ये बुद्धि बम बनाएगी और कैसे लोगों के ऊपर डालना इसका प्लान होगा, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं। सो बुद्धि माइनस सेल्फ रियलाइजेशन इज इक्वल टू डेवन। बुद्धि माइनस सेल्फ रियलाइजेशन इज इक्वल टू डेमोनियक। बुद्धि प्लस सेल्फ रियलाइजेशन इज इक्वल टू डिवाइन। दो फॉर्मूला। सो आत्मज्ञान कितना आवश्यक है सोचिए। हम आजकल हम यंग जनरेशन को, बच्चों को केवल बुद्धि शार्प करने के लिए एकदम उनका पूरा पूरा भरपूर प्रयास रहता है कि बुद्धि शार्प हो, बच्चा ये सीखे, बच्चा वो सीखे, बच्चा 3 साल का है तो स्विमिंग सीखे, 4 साल में बच्चा क्या और क्या ओलंपिक क्या क्या कंप्यूटर सीखे, पांच साल में बच्चा स्पेस में चला जाए, छह साल में बच्चा एकदम सॉफ्टवेयर डेवलप करे, सात आठ साल का बच्चा तो साइंटिस्ट बन जाए, दस साल में तो वो वर्ल्ड फेमस कुछ पारितोषिक लेके आए, रिकॉग्निशन करो ठीक है, नो प्रॉब्लम। परंतु साथ ही साथ यदि उसको आत्मज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाएगी तो यह नॉलेज यह बुद्धि इसका दुरुपयोग। एक ऐसी सिचुएशन जीवन में उत्पन्न होगी जो भ्रमित करने वाली होगी उसको, जो मटेरियल साइंस उसको सिखा नहीं सकता। भौतिकता उसको यह समाधान नहीं दे सकती। मान लो अचानक किसी विषय के प्रति टेंशन आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया, उदासीनता आ गई, क्या करेगा? आजकल उसका इलाज लोगों ने निकाला एंटी डिप्रेसेंट लेके, लेकिन क्या जीवन भर ले पाएंगे? क्या उसकी गारंटी कब आएगा कब नहीं आएगा डिप्रेशन? एनी टाइम एनीवेयर। उसको कैसे दूर करें इसका इलाज नहीं होगा, चाहे कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति होने दीजिए, कितना भी बड़ा शास्त्रज्ञ तो साइंटिस्ट होने दीजिए, बहुत बुद्धि है परंतु चेन स्मोकर होता ही है ज्यादातर। बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स है परंतु अल्कोहल पीते ही है। क्या लक्षण है? बुद्धि के लक्षण है। क्यों ऐसा होता है? फोकस्ड इंटेलिजेंस है। वो डॉक्टर बनेंगे एकदम वर्ल्ड फेमस डॉक्टर, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? आत्मज्ञान नहीं। इसलिए आत्मज्ञान जरूरी है, एसेंशियल, इसेंस ऑफ लाइफ। आत्मज्ञान होना बहुत आवश्यक। सो एकाग्र बुद्धि यदि सात्विक बुद्धि है तो आत्मज्ञान की ओर हमको ले जा सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और इस प्रकार से आत्मज्ञान से बुद्धि का उपयोग होता है तो वो हमारे कार्यों में हमको ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा का अनुभव होगा, हमको उत्साह का अनुभव होगा, ऊर्जा और उत्साह का अनुभव होगा। अन्यथा कार्य करते रहेंगे, जीवन व्यतीत होगा, समय चलता जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आते रहेंगे, उसको झेलते रहेंगे, ये सब इन सब को सहन करते 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 हम क्षीण हो जाए, दुर्बल हो जाए। और ये संसार जो है एक बहुत ही बढ़िया प्रयोजन है हमको दुर्बल बनाने, बहुत सुंदर अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है हमको दुर्बल बनाने की। यदि हम इसका यूज नहीं जानते, यदि हम आत्मज्ञानी नहीं है, यदि हम सेल्फ रियलाइज नहीं, यदि हमारी फोकस्ड इंटेलिजेंस एकाग्र बुद्धि आत्मा की ओर बुद्धि नहीं है तो ये इतनी बढ़िया अरेंजमेंट है कि हम जीवन भर दुर्बल होते रहे। इस जीवन में उत्साह की कमी जीवन भर रहेगी। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम।
तो हमको हमारे शरीर मन और बुद्धि का योग्य उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है, शक्ति प्राप्त करना है, दुर्बलता से दूर रहना है, दुर्बलता को त्यागना है। हमारी दुर्बलता क्या है? व्हाट इज आवर वीक पॉइंट? सबसे बड़ा वीक पॉइंट वी फॉरगेट कृष्णा, भूलने की बीमारी। सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है? वी फॉरगेट, भूलना। नहीं बीमारी है नहीं है कि बहुत बड़ी बीमारी है। और उससे भी बीमारी की थर्ड स्टेप क्या है? लास्ट स्टेज ऑफ द बीमारी, जो स्मरण रखना चाहिए उसको भूल जाते हैं और जो भूलना चाहिए उसको, ये फाइनल स्टेज इस बीमारी की, एकदम लास्ट स्टेज। सो फॉरगेटफुल नेचर, ये हमारी बहुत बड़ी सीक कंडीशन, बीमारी की स्थिति है, रोग की स्थिति है। इसी के कारण हम आत्मज्ञान की और बुद्धि बढ़ नहीं पाती, इसी के कारण हमारे कार्य में, हमारे शरीर को, हमारे मन को ऊर्जा का अनुभव, ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। केवल यही कारण है, क्या हम भूलते हैं। कोई बच्चा यदि बचपन में स्कूल में जाते हैं, बच्चे लोग भूल जाते हैं तो क्या करते हैं उनसे, रिपीट करवा, प्रैक्टिस क्या करवाते हैं, प्रैक्टिस अभ्यास योगे, अभ्यास योग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो क्या करना होगा, ये भूलना हमारी बीमारी है तो करना क्या होगा, क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करेंगे प्रैक्टिस, सत्संग प्रैक्टिस करने के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, कहीं से भी शुरुआत करो, कोई एक पकड़ो और पक्का, और फिर प्रैक्टिस करते रहो बाकी सब की प्रैक्टिस होती रही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसके उच्चारण की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये जो महामंत्र है अभी हमने कहा है, इसके उच्चारण की बहुत ही अच्छे अच्छी प्रैक्टिस, अभ्यास करो। जब यह अभ्यास हो जाएगा तो भूलने की बीमारी से हम दूर हो जाएंगे, और जब हमारे यह रोग कम हो जाएगा तो हमारी बुद्धि आत्मज्ञान की ओर बढ़ेगी। आत्मज्ञान की ओर बुद्धि जब बढ़ेगी तो हमारे कर्म में, हमारे विचारों में ऊर्जा का अनुभव हमको होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा, है ना। तो सबको यह प्रैक्टिस नित्य करना है ना? दूसरा, दूसरी पंक्ति इस श्लोक की है, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। क्या कहते हैं भगवान, मई, ये तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति क्या है, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। संपूर्ण कर्म अर्पण करने पर भी मनुष्य के अंदर कामना, ममता और संताप का कुछ ना कुछ अंश तो रहता ही है। कामना, ममता, संताप, स्वार्थ, मैं का भाव। मान लो मैंने कुछ किताब लिखा और आपको मैंने दे दिया, ये लो प्रभु जी किताब, आपने वो लिया, मैंने आपको दिया, आपने उसका स्वीकार किया। नेक्स्ट शुक्रवार को जब मैं आपको देखूंगा, आपके पास वो किताब आप पढ़ रहे हैं, तो मेरे मन में क्या भाव है, मेरी किताब है, मैंने दी है, मेरी किताब है, दिया, लेकिन भाव क्या है, मेरी है, मैंने दी है। समर्पण हुआ, परंतु कभी कभी बीच में मैं, मेरा है, मेरे लिए है, ये अशुद्धता है। इसलिए भोग भोगने की जो विचारधारा है, हमको भोगना हमेशा नित्य हमारा जो चित्त लगा रहता है कामनाओं में, मेरे शरीर के प्रति मेरा नित्य कॉन्सेंट्रेशन रहता है, बड़ा बड़ी तीव्रता रहता है, तीव्र भाव रहता है, शरीर को सुख देने की बड़ी लालसा होती है, बड़ी आसक्ति होती है, बहुत सारे आकर्षण होते हैं, सब कुछ होता है। इन सब बातों को स्वीकार, इन सब बातों को भोगने के लिए, मैंपन का को भी भोगने के लिए, अर्थात मेरे शरीर को भोगने के लिए नित्य प्रयास रहता है। इसके कारण समर्पण नहीं होता है, मान सम्मान ये सब चाहिए रहता है, समर्पण नहीं होता। आज दशहरा है, बहुत ही महत्व का महोत्सव है। दशहरा अर्थात काम भाव पे, भोगवादी विचारों पे या भोग के ऊपर समर्पण का विजय, भोगवादी विचारों पे समर्पण के विचारों का विजय है ना। सेंस ऑफ एंजॉयमेंट पे सेंस ऑफ डिवोशन का विजय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कामनाओं पे त्याग का विजय, भ्रम के ऊपर सत्य का विजय, भोगवादी विचारों के ऊपर समर्पण का विजय, यह दशहरा। भोगवादी विचार है, तुरंत समर्पित भाव रखिए तो समझिए कि दशहरा सेलिब्रेट किया। रावण क्या करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, सारे ऐश्वर्य को भोगना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, कामना काम प्रचंड आवेग में आ गया है और वो उसी को प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है। वही विभीषण समर्पित है, उसके पास सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है रावण के पास, विभीषण के पास सेंस ऑफ डिवोशन सरेंडर समर्पण का भाव। युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, युद्ध होने जा रहा है, अंगद जाके आए भगवान राम के दूत, रावण के पास जाके आए शिष्टाचार करके आए, परंतु रावण नहीं माना, अर्थात युद्ध होने ही वाला है भयंकर। उसके पहले विभीषण को रावण ने लात मार के भगा लिया। क्यों? क्योंकि विभीषण ने राज्यसभा में दरबार में कहा कि हे रावण यह सब क्यों कर रहे हो, यह बहुत भयंकर युद्ध होगा, बहुत ही हानि होगी, क्यों नहीं तुम माता सीता को लौटा दो, आप नहीं जानते हो भगवान राम को बहुत शक्तिशाली। रावण का तुरंत कहने लगा क्या तुमको मेरे शक्ति का अंदाजा नहीं है, क्या तुम कायर हो। विभीषण को कहे एक लात, विभीषण को मार लात मार के लिटरली भगाया है, जो शब्द प्रयोग किया गया कि लात मार के भगा दूंगा, तो लात मार के, परंतु विभीषण ने उसको सहन किया क्योंकि समर्पित भाव शास्त्र को जानते, फिर भी समझाया रावण निकल पड़े। इस पार आ रहे हैं भगवान राम के कैंप की ओर आ रहे हैं, वानर सेना के जो कैंप लगे थे युद्ध स्थल पे कुरुक्षेत्र पे तो वहां की उस दिशा में आ रहे हैं, तुरंत सारी वानर सेना सज्ज हो गई, सुग्रीव वगैरह कहने लगे भगवान राम को, शस्त्र निकाले और कहने लगे यदि मैं विभीषण को मार दूंगा, क्योंकि शत्रु का बंधु है, भाई है, हमारे को दिशा की ओर आ रहा है, इसका अर्थ ये कुछ ना कुछ माया भी है, राक्षस है तो माया भी होगी, ये कुछ माया का प्रयोग करेगा और हमारे ऊपर यहां पे आके आक्रमण करेगा, हम इसको यहां पहुंचने के पहले ही खत्म कर देते हैं। परंतु भगवान राम क्या कहे, नहीं नहीं, वो समर्पण की भाव से आ रहा है, सरेंडर अपने आप को सरेंडर कर रहा है, तो कोई युद्ध की तैयारी से नहीं आना है, वो समर्पित भाव से। वास्तव में जब विभीषण निकट आए, उन्हें प्रणाम किया भगवान राम का, भगवान श्री रामचंद्र को प्रणाम किया और उनके चरणों में समर्पित हो गए। परंतु फिर भी कुछ सेना के कुछ जो योद्धा थे उनको संशय और भगवान को कहने लगे, देखो राक्षस लोग हैं, नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, पता नहीं आपको शरण आया हमारे ज्ञान में रहेगा, सारी इधर की खबर उधर पहुंचा देगा। रावण के पास, रावण का भाई है भगवान राम, क्या कहे भगवान राम कहे, उसने मेरा एक बार मुझे समर्पित हुआ है, उसने कहा है ही सरेंडर्ड, उसने हाथ ऊपर करके कहा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि रावण भी इस प्रकार से करता है हाथ ऊपर करके, तो मैं उसको भी क्षमा कर दूंगा, ये तो उसका भाई है। रावण के पास यदि समर्पण का भाव है, वो यदि समर्पित भाव से हरे कृष्ण करता है, समर्पित हो जाता है, तो मैं उसको भी क्षमा कर दूंगा। बताइए समर्पण की कीमत देखिए। भगवान कह रहे हैं कि उनकी पत्नी को जिसने किडनैप किया, माता सीता का हरण किया रावण ने, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं यदि वो मुझे समर्पित हो गया, यदि वो सरेंडर हो गया, वो कहने कि आई एम सरेंडर टू यू, मैं आपके चरण कमलों पे समर्पित हूं, एक बार भी यदि वो कह दिया मैं उसको उसके सारे पापों से इसको मुक्त करूंगा, क्षमा करूंगा। यह है समर्पित होने की कीमत। समर्पित भाव जिसके पास है उसको यह पारितोषिक प्राप्त होता है, भगवान की इतनी कृपा। भगवान स्वयं कहते हैं मैं उसके सारे पाप माफ कर दूंगा। एक अब भगवान की पत्नी को किडनैप करने ने सब पाप माफ करने वाले हैं भगवान, क्षमा करने वाले हैं, दूसरे कितने बड़े पाप हो सकते, सारे पाप क्षमा करूंगा। परंतु यदि कोई इंद्रिय भोग में लगा हुआ है तो उसको मेरे साथ युद्ध करना होगा। रावण इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, उसको क्या करना होगा, भगवान के साथ ही, भगवान उसके साथ युद्ध करेंगे। सो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना है, क्या करना है, समर्पण का भाव। यही दशहरे का यही फेस्टिवल है, जो समर्पित होगा विजय तो उसी का होगा। विभीषण को राज सत्ता राज्य का पूरा राजा बना दिया गया है, और रावण का मृत्यु हुआ। यह दशहरा है विजय, विजयादशमी कहते हैं, यही वास्तविक विजय है। हम तभी विजयी होंगे, हम तभी दशहरा मनाने के योग्य होंगे, जिस दिन हम हमारे भोगवादी विचारों को समर्पित विचारों से खत्म करते, समर्पण के विचारों से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस दूसरी पंक्ति में कहा है निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। निराशी, निराशी का अर्थ है निराशा, अर्थात कामना रहित, कोई कामना नहीं, कामना निराश, कोई विचार नहीं है, कोई कामना नहीं है। कौन सी कामना नहीं है, बस मुझे ही चाहिए, मेरा ही है, मैं ही हूं, मुझे ही इंद्रिय तृप्ति करना है, इस प्रकार की कामना। कैसे समझेंगे इस बात को, थोड़ा अपने शरीर से अपने स्वयं को ऐसा बाहर निकालें, ऐसा निकालिए बाहर, मैं आत्मा हूं ना, इस आत्मा को थोड़े कुछ क्षण के लिए ऐसा वहां खड़े वो चेयर पे बैठा और उसको वो आत्मा को अपने शरीर को और देखने के लिए देखो, शरीर देखो, मन देखो, जब मन देखने लगेगा आत्मा तो इसके लिए करना क्या होगा,
आत्मा को शरीर से सेपरेट करने के लिए
निकाल के नहीं रखना है आपको वास्तव में।
आपको क्या करना है, यह जो दो भिन्न तत्व है, भिन्न है ना, आत्मा कुछ अलग मटेरियल से बना है, शरीर कुछ अलग मटेरियल से बना है, भिन्न तत्व है, तो आत्मा के तत्व पे जाइए तो शरीर भिन्न दिखेगा आपको। आत्मा के स्तर पे जाएंगे तो शरीर भिन्न दिखेगा, परंतु जब शरीर ही शरीर के स्तर पे रहेंगे तो दूसरा कुछ भी नहीं दिखेगा। यू विल सी नथिंग ओनली बॉडी। आत्मा के स्तर पे जाने से शरीर भी दिखेगा मन भी दिखेगा। तो आत्मा के स्तर पे गया तो मैं आत्मा हूं, आत्मा के स्तर पे जाने से हमको दिखेगा कि मेरा शरीर क्या है, ऐसा विभव सागर है ना, ये भव सागर है बहुत बड़ा। ये भव सागर पे शरीर रूपी नाव बोट जहाज सब तैरता हुआ दिखेगा, तैर रहा है। देखो इसको, इस शरीर को और इस मन को देखो, अपने ही शरीर और मन को देखो, जस्ट ए बॉडी, जस्ट ए मटेरियल दिखेगा, थोड़ा त्रस्त साक्षी के भाव से देखो, साक्षी के भाव से। प्रभुपाद जी महाराज बहुत सुंदर उदाहरण दिए तात्पर्य, बैंक के कैशियर कोई है, कैशियर बैंक में जो कैशियर के काम करते हैं वो क्या करते हैं, सुबह से शाम तक नोट ही गिनते, कितना करोड़ों रुपए, कौन से भाव से गिनते हैं, ये मेरा है कि मेरा नहीं है, इतना गिनते, लेकिन क्या मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। आसक्ति बहुत होती है उससे, धन से आसक्ति कम है, किसको नहीं है, प्रचंड आसक्ति है धन, धन से मन में कुछ विपरीत विचार भी आ सकता है, धन को देख इतने भयंकर आसक्ति होती है धन से। परंतु जब कैशियर नोट्स गिनता है तो उसका भाव एक ही रहता है, ये मेरा नहीं है। गोपाल जी महाराज बहुत सुंदर उदाहरण दिए इस तात्पर्य, जिस क्षण वो सोचेगा ये मेरा है तो दुखी हो जाएगा, बहुत दुख का अनुभव करना पड़ेगा उसको, क्योंकि फिर उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, कुछ तिकड़मबाजी लगाएगा, कुछ घोटाले करेगा और अंततः जेल में जाएगा, क्योंकि क्या भाव था उसका, मेरा है मुझे चाहिए। परंतु यदि प्रामाणिक भाव से भी वो सोचे कि ये तो धन में केवल आई एम जस्ट काउंटर, मैं केवल गिनने का काम करता हूं, मैं मुझे ये मेरा नहीं है, इसको केवल गिनने का कार्य करके मुझे अपने जीवन को सिद्ध करना है, अपने जीवन को अच्छे से जीना है, ये मेरा। इसी प्रकार से इस शरीर और मन से यह कहना कि भाई ये मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, मुझे इसको काउंट करना है, इस पर वॉच रखना जरूर है, किस लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने आगे के जीवन के कल्याण के, ये मेरा नहीं, जस्ट लाइक अ कैशियर, त्रस्त के भाव से देखना चाहिए, तभी जाके कुछ निराशा, भगवान यहां कहते निराशा, कोई आशा कोई कामना नहीं है। कामना कब होती है व्यक्ति को, जब व्यक्ति क्या शेर के जैसा नहीं सोचता है, सोचता है ये मेरा है, तो मेरा मैंपन के भाव से कामनाएं उत्पन्न होती है, ये इसको कहते हैं अहंकार, फॉल्स ईगो। तो सही ईगो क्या है, मैं आत्मा हूं, ये ट्रू ईगो, एंड फॉल्स ईगो मैं शरीर। कामनाएं किससे उत्पन्न होती है, मैं शरीर हूं यह समझने से, अर्थात फॉल्स ईगो से, और ट्रू ईगो से क्या होता है, मैं आत्मा हूं भगवान का अंश हूं, इससे क्या होता है, इससे समर्पण का भाव। दो ईगो है, कितने ईगो हैं? दो प्रकार के अहंकार, दो प्रकार के ईगो हैं। एक ईगो जो है वो क्या है? मैं शरीर हूं। व्यक्ति हम अपने स्वयं की स्वयं का परिचय कैसे देता है? अपने शरीर से देता है, आइडेंटिटी। इसलिए आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं हम तुम्हें। आइडेंटिटी मिट्टी में मिल जाती है। बड़े बड़े लोगों की आइडेंटिटी ऐसे ही मिट्टी में मिल गई कि इसका कारण क्या है? इट इज फॉल्स, अनट्रू, फॉल्स अहंकार। क्यों फॉल्स कहा गया है? क्योंकि वो क्षणिक है, कुछ समय के पश्चात वो वाइप आउट हो जाए, इस संसार से उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। सो फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो के कारण कामनाएं उत्पन्न होती है, और ट्रू ईगो के कारण समर्पण का भाव जागृत होता है। समर्पण का भाव जहां जागृत होगा वहां सेल्फ रियलाइजेशन का आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार हो सकता है ना। इसलिए भगवान ने इस दूसरे पंक्ति में पहला ही शब्द कहा है निराशी, निराशी अर्थात कामना रहित, निर्मम, निर्मम अर्थात जो व्यक्ति वास्तव में समर्पित है भगवान को, जो व्यक्ति ऑलरेडी कृष्ण कॉन्शियस है, जो व्यक्ति भगवान का भक्त बन रहा है, बनने का प्रयास कर रहा है या बन गया है, वो व्यक्ति कभी यह दावा नहीं करता है कि यह सब मेरा है। वो कभी नहीं कहेगा कि यह सब मेरा है। वो नित्य क्या कहेगा? इदम कृष्णाय इदम नमः। कहते हैं ना यज्ञ में आहुति देते स्वाहा, इदम कृष्णाय इदम नमः स्वाहा। सब कृष्ण का है, इदम कृष्ण, सब कुछ कृष्ण का है, इदम नमः मेरा कुछ भी नहीं। ये समर्पण का भाव, अर्पण का भाव है ना। हमारे कर्म को हमने यज्ञ समझना चाहिए। हमारे कर्म क्या है? यज्ञ है। यदि वो हम कृष्ण के लिए या कृष्ण को केंद्र में रख के कर रहे हैं तो हमारे कर्म यज्ञ है। और हमारे प्रत्येक कर्म को हम आहुति के रूप में अर्पण कर रहे हैं भगवान, प्रत्येक कर्म को यज्ञ में अर्पण कर रहे हैं। कर्म यज्ञ है, कर्म के जो फल है उसको हम अर्पण कर रहे हैं। इदम कृष्णाय इदम भगवान को अर्पण कर रहे, जो कुछ भी कर्म है उसके फल हम भगवान को अर्पण कर रहे। इसलिए ऐसा समझना चाहिए रोज सुबह उठते से शाम को सोने तक हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। ऐसे कर्म हम करते हैं, सुबह से शाम तक हम यज्ञ करते हैं। नहीं, हमारे कार्यों को, हमारे कर्मों को यज्ञ बनाना चाहिए। वो यज्ञ बनना चाहिए। कब बनेंगे यज्ञ? यज्ञ कर्म कैसे होंगे? जब हम ट्रू ईगो, फॉल्स ईगो नहीं रखेंगे। मेरे शरीर के लिए कर्म नहीं करूंगा, या मेरे शरीर को भोगना ही है केवल, बस इसलिए गधे के जैसा कर्म कर रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कृष्ण का, भगवान का अंश हूं, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति है, करना है। जैसे कैशियर सोचता है कि ये तो मेरा केवल जॉब है, इसका मैं उपयोग कर रहा हूं मेरे जॉब का, उसी प्रकार से शरीर और मन का मैं उपयोग कर रहा हूं इस प्रकार के कर्म करने के लिए, परंतु मेरा उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान मेरा उद्देश्य है। हमारे कर्म यज्ञ कर्म तभी होंगे जब हम अपने आप को नित्य यह सोचेंगे कि मैं क्या हूं? आत्मा हूं और कृष्ण का अंश हूं। तभी जाके समझ लीजिए 24 आवर्स हम यज्ञ ही यज्ञ करेंगे, और अन्यथा यदि वह नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम? कामना जो रावण की, रावण की कामना है कि विभीषण का समर्पण। आज दशहरे का दिन है, बहुत ही अच्छी तिथि है, तो आज से हम यह कार्य कर तो अवश्य कर सकते, संकल्प कर सकते हैं कि समर्पण के भाव से जो भी कर्म करना है समर्पण के भाव से करेंगे, भगवान को समर्पित होकर करेंगे। भगवान को समर्पित होने का अर्थ है कि मैं यह समझता हूं अच्छी तरह से मैं आत्मा हूं, ये मेरी रियल आइडेंटिटी है, शरीर और मन मुझे प्राप्त हुए हैं, इनका मुझे उपयोग तो करना ही है, उनका उपयोग करके ही मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, परंतु उसका उपयोग करना है, यह ना समझे कि यही मेरा है, शरीर ही मेरा है, शरीर ही मैं हूं, तो वो क्या हो जाएगा? भ्रम की ओर ले जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे।
डू नॉट डेवलप अ फीवर ऑफ एक्शन, अर्थात कर्म का इतना भी आवेग मत आने दीजिए कि बस मैं कर्म काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, काम काम करना, 5 बजे से लेकर रात को 12 मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बहुत काम है, मेरी हैप्पी मेरे पास बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत एक्साइटमेंट। डू नॉट हैव अ फीवर ऑफ एक्साइटमेंट। कौन सी एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट इज ऑफ आवेग। व्यक्ति को कर कुछ कुछ लोग कहते हैं कि हम आई एम वर्कोहोलिक, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक। प्रभुपाद महाराज बहुत सुंदर था, एक बार प्रभुपाद महाराज को किसी ने पूछा कि वो आध्यात्मिक जगत जो है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसा लगता है? किसी ने पूछ लिया ऐसे अमेरिका में, कैसे लगता है वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, उधर कुछ एंजॉयमेंट है क्या? कुछ एंजॉय करने को मिलेगा क्या वहां पे जाने के बाद? आप बोलेंगे उधर जाना है, जाना है, हाँ गए तो कुछ बार वगैरह कुछ है उधर, कुछ एंजॉय करने को मिलेगा क्या? कैसी एंजॉयमेंट होती है वहां पर, वहां का एंजॉयमेंट कितना होगा? प्रभुपाद महाराज कहे 1000 लीटर अल्कोहल पीने से जो आपको एंजॉयमेंट होगा ना, जो फीलिंग होगा ना, मोर देन दैट, उससे भी ज्यादा एंजॉयमेंट वहां पे। प्रभुपाद जी कैसे उस एंजॉयमेंट को, प्रभुपाद जी हमको कौन से स्तर पे आके समझा रहे? देखिए आपको करना है तो इमेजिन कीजिए कि वहां कितना एंजॉयमेंट है, इमेजिन कीजिए कि समर्पण का भाव रखने से कितना आनंद प्राप्त हो सकता है, इमेजिन कीजिए कि समर्पण में कितनी एंजॉयमेंट है, समर्पण में कितनी एंजॉयमेंट है, व्हाई यू बिकम अल्कोहोलिक, व्हाई यू बिकम वर्कोहोलिक। वर्कोहोलिक इसलिए बनते हैं कि आनंद सुख समाधान चाहिए, परंतु प्रभुपाद जी कहते कि समर्पण में वो आनंद और सुख और समाधान है। डोंट बिकम वर्कोहोलिक, वर्कोहोलिक बनने की जरूरत नहीं है। कर्म को यज्ञ बनाओ, यज्ञ कर्म करो, अर्थात एक्शन इन राइट कॉन्शियसनेस। कर्म जो है योग्य कॉन्शियस, योग्य चेतना में कर्म करना। कौन सी चेतना? फिर से कहता हूं, ट्रू ईगो, आई एम सोल, आई एम सोल, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं, यही चेतना सही चेतना है, इसी चेतना से कर्म करते हैं तो यज्ञ कर्म होता है, तभी जाके समर्पण का भाव भी उत्पन्न होता है, और समर्पण में जो एंजॉयमेंट है वो एंजॉयमेंट में भी एंजॉयमेंट नहीं है, एंजॉयमेंट में भी वो एंजॉयमेंट नहीं है जो समर्पण में एंजॉयमेंट है। लोग सोचते एंजॉयमेंट अर्थात नाच गाना, खाना पीना, इंद्रिय भोग करना, इसमें एंजॉयमेंट है। अरे एक बार समर्पित तो होंगे, देखिए उसमें देखिए कितने एंजॉयमेंट होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से एक्साइट नहीं होना चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं होना। फीवर इसको कहा है ज्वर, ये ज्वर है, विगत ज्वर भगवान इसमें कहते हैं, ज्वर है, फीवर है, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट व्यक्ति को भविष्य के होता, आज कर्म करता है तो सोचता है आगे मैं ये करूंगा वो प्राप्त करूंगा, ऐसे होगा वैसे होगा फलाना होगा। परंतु आज क्या दशा है, आज की स्थिति क्या है, अभी की क्या पोजीशन है, और अभी मैंने उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका विचार नहीं करता है। इसलिए अपने आप में ही द्वंद्व शुरू हो जाता है, एक विचार जाता है फ्यूचर का करता है एक विचार, तो शरीर तो इधर वर्तमान में बैठा हुआ है, मन गया भविष्य में, शरीर इधर वर्तमान में बैठा हुआ है, मन और शरीर के बीच में और ये फाइटिंग, तनाव उत्पन्न हो जाता है, एक्साइटमेंट उत्पन्न हो जाती है, वो आवेग नॉट ट्रू। और डू नॉट डेवलप आलस्य, आलस्य भी नहीं होना चाहिए। आलस्य क्या है, सबसे बड़ा आलस्य क्या है, किसको समझ, कौन आलसी है, किसको समझना चाहिए आलसी है? जो आत्मज्ञान प्राप्त पर प्राप्ति के लिए पोस्टपोन करते रहते हैं, अरे आज कर नहीं कल, अरे कल नेक्स्ट फ्राइडे, एवरी फ्राइडे तो होता ही है आपका, अगले फ्राइडे आएंगे, नेक्स्ट शुक्रवार को आएंगे, पोस्टपोन। कोई कोई कहता है मैं बहुत काम करता हूं, बहुत काम है इसलिए आ नहीं पाता हूं, समझना चाहिए बहुत आलसी है, सबसे बड़ा आलसी। काम के कारण यदि कोई व्यक्ति सत्संग में या आध्यात्मिक कार्य में नहीं आता है तो उसके इतना आलसी दूसरा कोई नहीं, बिग लेजी। सो ये आलस्य भी नहीं होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, तत्पर होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए आध्यात्मिक कार्य के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योगायोग की आज दशहरा ही है और यही विषय है, तो यह मुख्य बात ध्यान में रखिएगा, समर्पण का भाव होना बहुत आवश्यक है। समर्पण का भाव होगा तो ही विजय प्राप्त होगा, भगवान तभी प्रसन्न होंगे। भगवान ने जैसे विभीषण को कहा ये समर्पित हो गया तो इसको मैं, इसका रक्षण करने के लिए मैं कदापि नित्य तैयार होगा, इसका प्रोटेक्शन इसको जो चाहिए वो मैं दूंगा, इसने मेरा आश्रय ग्रहण किया है। रावण भी ये करता है तो मैं उसको भी आश्रय दूंगा, उसको भी सब क्षमा कर दूंगा, ये भगवान की विशेषता है। तो आज के दिन हम इसी कॉन्शियसनेस से हम कर्म करें, इसी चेतना से हम कर्म करें, तो जो हमारा उद्देश्य है जीवन का, मनुष्य जीवन प्राप्त करने का, वो उद्देश्य निश्चित ही सफल हो जाए, उनको प्राप्त हो जाए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
श्रील प्रभुपाद की जय। प्रश्न, एक प्रश्न पूछे क्या करना चाहिए उसमें, पता नहीं लगा, आप सुख आ जाता है। देखिए हमारी प्रैक्टिस कितनी जोरदार है उसकी, मैं तो मेरा पेन भी यदि आपके पास दिख गया तो मेरा है, कुछ करना नहीं है, आप सुख अपने आप ही आ जाता है विचार कि तो मेरा है, मेरा का भाव, शरीर का भाव है ना, ये क्यों आता है, इसको इससे दूर होने के लिए या इसके ऊपर मार देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये गुरु जी का प्रश्न है। भय का भाव आता है ना जहां तहां। अब ये तो एक चीज हुई किताब, लेकिन अभी गेट के बाहर जाओ तो ऐसा लगता है वो शर्ट मैंने लेना चाहिए, एक कार मेरी होनी चाहिए, नेक्स्ट मंथ में थोड़ा लाभ होना चाहिए, ऐसा होता है। सेंस ऑफ इंडिया भय का भाव उत्पन्न होता है बहुत ज्यादा। तो प्रश्न ये है कि उससे उसके उसका सोल्यूशन क्या है। तो उस तो कहने का अर्थ यह है कि ये भाव आता क्यों, ये समझना चाहिए। वो सस्ता दो रुपए का भी क्या रखा तो भी ये भाव आता है, कहीं पे एक रुपया पड़ा हुआ दिखा तो उठाने का भाव आ जाता है। सोचते ही मतलब कुछ करने नहीं, मैकेनिज्म ऐसा है अपने आप हाथ बढ़ता है उधर, अपने आप उठता है, मैकेनिज्म ही ऐसा है। क्या रीजन है समझना पड़ेगा पहले, ऐसे क्यों होता है। ऐसे इसलिए होता है, हमारा जो अहंकार मय का भाव हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है वो संस्कारों के कारण। हमारे ऊपर इतने संस्कार हो चुके हैं इस प्रकार से, ऐसे बहुत संस्कार हो चुके पहले तो ये जन्म में हुए हैं। जैसे जन्म हुआ हमारा तो हमारे आसपास का जो भी वातावरण था वो वातावरण सब कुछ ऐसा ही था। हमने यही देखा, हमने देखा कि पैसे को कितना महत्व है, हमने देखा कि वस्तुओं को कितना महत्व है, हमने देखा हमारे आसपास के लोग वस्तु धन इन सब भौतिकता को कितना महत्व देते हैं। एकदम हम छोटे से थे तब से इसका सारा संस्कार हुआ है। और पहले जन्म से जो कुछ संस्कार लेके हम आए, कर्जा सर पे लेके जो कुछ भी आए वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको तो कुछ वापस ईएमआई तो कुछ भरा नहीं, ऊपर से फिर ले रहे है कि नहीं। तो ये भरते जा रहा है भरते जा रहा है, ये सारे संस्कारों का इतना जबरदस्त प्रभाव हमारे ऊपर है कि कुछ भी हो जाए कहीं भी जाए, भक्ति में सत्संग में आएंगे, भक्ति में आएंगे तभी भी मन में स्वार्थ के विचार चलते हैं। कितना बच गया, बच गया 5 मिनट ज्यादा हो गया, विचार शुरू हो गए, सुबह इतने बजे जाना है, कल सैटरडे छुट्टी है, लेकिन वो फलाने को मिलना था, उससे वो काम करवाना था, इससे इधर चल रहा है सत्संग। इसका रीजन क्या है, रीजन इज कि हमारे ऊपर इतना मयपन का इतना ट्रेनिंग हमको दे चुका है, इतना जबरदस्त पीएचडी हमने उसमें प्राप्त की है कि वो आप सुख अपने आप नेचुरली वैसे थॉट आ जाता है क्योंकि संस्कार वैसे संस्कार है। क्या भक्ति में आने पर भी ऐसा होता है, यदि शुद्ध शुद्ध भक्तों का संग नहीं है, शुद्ध भक्तों का यदि संग नहीं है और हमारी भक्ति ऐसी ऊपरी ऊपरी भक्ति हम कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं भगवान को प्राप्त करना भक्ति को प्राप्त करना कोई दिखावा नहीं है, दिखाने की चीज नहीं है, इसको प्राप्त करने के लिए सद्गुणों की आवश्यकता है ही है। एसेंशियल सद्गुण चले तो भक्ति में आने पर भी प्रसाद के समय पार्षद, अरे मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, अरे दूसरा बेचारा भुखा नहीं, मुझे बैग में भी भर के चाहिए, अरे दूसरे को प्रसाद भाव है। फेस्टिवल के समय नहीं, कभी सद्गुणों की आवश्यकता है, सद्गुण होना बहुत आवश्यक है। पर उस सद्गुण भी तो संस्कार से ही आते हैं ना, तो संस्कार एक बहुत ही महत्व का विषय है और यह हमारी बाल्यावस्था से होना चाहिए। अब क्या करें, इसलिए लाल महाराज भागवत में कहते हैं कौमार कौमार अवस्था से ही आचरण करो, तब जाके हम जो आनंद की या जो जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति चाहते हैं वो प्राप्त हो। पर ठीक बात है, जो हुआ सो हुआ, अभी क्या करें।
प्रश्न है ये अभी क्या है, अभी ये भाव आना है तो अभी क्या।
रूपा जी महाराज बहुत सुंदर इसके ऊपर एक तात्पर्य में वर्णन किया है, जब भी हमारे अंदर इस विषय में यह विषय आएगा तो मैं मुझे मेरा मेरे लिए, तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट विचार मन में लाना चाहिए, एग्जैक्टली अपोजिट विचार। जैसे भोग भोगने का विचार आया, कुछ भोगने का विचार आया तो तुरंत सेवा का विचार करना। जैसे मुझे एकदम विचार है कि अभी है ना, मुझे बहुत अच्छा वो बहुत अच्छा शर्ट लगा, और वेरी ब्यूटीफुल शर्ट, आई वांट टू बाय इट, 1000 रुपए का है, एकदम विचार है। तुरंत मैंने विचार लाना चाहिए कि मंदिर में कल दान करूंगा, मेरे मन में विचार है अभी 1000 रुपए का शर्ट लेना था ना, 101 रुपए तो कम से कम कल दान करूंगा। जब भोगने का विचार आएगा तो त्यागने का विचार तुरंत आना चाहिए, भोगने का जब विचार आएगा तब तुरंत सेवा का विचार आना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध करने का विचार है, बहुत एकदम ऐसे क्रोध आया, तुरंत दूसरा विचार कि इसकी कैसे कल मैं सेवा करूं, तुरंत दूसरा विचार आना चाहिए। धीरे धीरे ये भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो जब यह प्रैक्टिस 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 होगी, बहुत दिनों तक प्रैक्टिस होगी, तब जाके अपने आप ही होगा कि ठीक है
जाने दो,
चलता है ठीक, कोई बात नहीं। आपको सभी ने प्रसाद दिया गया, वो फलाने कॉलोनी में दिया गया, बाजू के कॉलोनी में दिया गया, पड़ोसियों को दिया गया, सबका होगा तब मैं दूंगा, तब ये भाव आए सेवा। जो भी एंजॉयमेंट का विचार आता है उस विचार को, भोगने का जो जो भी विचार उत्पन्न होता है, इमीजिएट त्यागने का विचार भी मन में लाना चाहिए। ये सॉल्यूशन है, डिफिकल्ट है ना, आसान नहीं। मान लो भोगने का 1000 रुपए का विचार है तो त्यागने का 100 रुपए का कर सकते, 50 का नहीं, 10 रुपए का। 1000 का भोगने का है विचार, 10 रुपए का तो त्यागने का कर। धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो वो बैलेंस एक दिन ऐसा आएगा कि बैलेंस हो जाएगा, और फिर पहले त्यागने का विचार आएगा, पहले मैं आत्माओं का विचार आएगा, अभी पहले शरीर का विचार आता, पहले आत्मा का विचार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। Shri Prabhupada ki jai।